नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नेहा गोस्वामी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली स्थित यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन किया। कहा, दुनिया भारत के साथ सेमीकंडक्टर का भविष्य बनाने के लिए तैयार। दिल्ली सरकार में मंत्री परवेश साहिब सिंह ने दिल्ली के सभी जिलों के जिला मजिस्ट्रेट के साथ यमुना और संभावित बाढ़ की स्थिति को लेकर समीक्षा बैठक की। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को एक से अधिक वोटर पहचान पत्र रखने के मामले में नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया और दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉन कॉलेजिएट वुमेन एजुकेशन बोर्ड में प्रवेश के लिए 5वीं कट ऑफ सूची जारी की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजधानी दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन किया। कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया भारत पर भरोसा करती है और भारत के साथ सेमीकंडक्टर का भविष्य बनाने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि वह दिन दूर नहीं जब भारत की सबसे छोटी चिप दुनिया में सबसे बड़ा परिवर्तन लाएगी।
सेमीकंडक्टर की दुनिया में एक बात कही जाती है, ऑयल वॉज ब्लैक गोल्ड बट चिप्स आर डिजिटल डायमंड्स। 21वीं शताब्दी की शक्ति छोटी सी चिप में सिमट करके रह गई है। ये चिप भले छोटी सी है लेकिन इसमें दुनिया की प्रगति को बड़ी गति देने की ताकत है और इसलिए ही आज सेमीकंडक्टर्स का ग्लोबल मार्केट $600 बिलियन पर पहुंच रहा है।
श्री मोदी ने कहा कि भविष्य में वैश्विक सेमीकंडक्टर बाजार $1 ट्रिलियन को पार कर जाएगा और जिस गति से भारत आगे बढ़ रहा है उसे देश इस बाजार में एक महत्वपूर्ण हिस्सेदारी हासिल कर लेगा।
एक तरफ जब दुनिया भर की इकोनॉमी में चिंताएं हैं, आर्थिक स्वार्थ से पैदा हुई चुनौतियां हैं, उस माहौल में भारत ने 7.8% की ग्रोथ हासिल करके दिखाई है और ये ग्रोथ हर सेक्टर में है, हर तरफ उत्साह नजर आ रहा है।
वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सेमीकंडक्टर मिशन की शुरुआत के बाद से विश्व पूरे विश्वास के साथ भारत की ओर देख रहा है। उन्होंने कहा कि देश में 5 सेमीकंडक्टर इकाइयों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। श्री वैष्णव ने बताया कि ऐसी 2 और विनिर्माण इकाइयां कुछ महीने में उत्पादन शुरू कर देंगी। उन्होंने इस अवसर पर प्रधानमंत्री को पहली मेड इन इंडिया चिप विक्रम 32 बिट प्रोसेसर भी भेंट की।
टुडे कंस्ट्रक्शन ऑफ 5 सेमीकंडक्टर यूनिट्स इज गोइंग ऑन एट अ रैपिड पेस। पायलट लाइन ऑफ 1 यूनिट इज कंप्लीटेड एंड वी जस्ट प्रेजेंटेड द फर्स्ट मेड इन इंडिया चिप टू ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। 2 मोर यूनिट्स विल स्टार्ट प्रोडक्शन इन अ फ्यू मंथ्स फ्रॉम नाउ। द डिजाइन ऑफ 5 मोर यूनिट्स इज प्रोग्रेसिंग वेरी वेल।
कार्यक्रम में उपस्थित दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने संबोधन में कहा कि विक्रम 32 बिट प्रोसेसर भारत का पहला पूरी तरह मेड इन इंडिया माइक्रो प्रोसेसर है। उन्होंने बताया कि इसे इसरो की सेमीकंडक्टर लैब ने तैयार किया है और यह रॉकेट तथा लॉन्च व्हीकल जैसी कठिन परिस्थितियों में भी सफलतापूर्वक काम करेगा। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि यह उपलब्धि दर्शाती है कि भारत अब तकनीक में आत्मनिर्भर बन रहा है।
मैं जरूर कहना चाहूंगी कि भारत अब केवल कंज्यूमर मार्केट नहीं ग्लोबल सेमीकंडक्टर डिजाइन हब बन चुका है। विश्व के मानचित्र पर नई पहचान बन करके उभरा है। 20% ऑफ वर्ल्ड अब वैश्विक डिजाइन क्षमता भारत के हाथों में है। 85,000 से ज्यादा स्किल्ड प्रोफेशनल्स अब तैयार किए जा चुके हैं। 10 नए चिप संयंत्रों को मंजूरी मिली है और 2025 के एंड तक मेड इन इंडिया चिप का सपना अब साकार होने वाला है।
दिल्ली में यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जलस्तर में ये बढ़ोतरी दिल्ली एनसीआर में लगातार हो रही बारिश और हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने की वजह से देखी जा रही है।
आज इस संबंध में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शहर के गीता कॉलोनी फ्लाईओवर क्षेत्र जाकर यमुना के जलस्तर और प्रभावित इलाकों में जलभराव की स्थिति का निरीक्षण कर हालात का जायजा लिया। उन्होंने लोगों से मिलकर उन्हें भरोसा दिलाया कि सरकार उनके साथ हर पल खड़ी है। मुख्यमंत्री ने तराई वाले क्षेत्रों से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए गए परिवारों से मुलाकात भी की। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि रहने की सुविधा, भोजन, पानी और दवा जैसे हर जरूरी इंतजाम पहले से ही कर दिए गए हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार लगातार जलस्तर पर नजर बनाए हुए है। उन्होंने कहा कि पिछले 6 महीनों में दिल्ली सरकार द्वारा नालों और यमुना की डीसिल्टिंग का जो काम किया गया है उसका बड़ा लाभ मिल रहा है और पानी का बहाव निर्बाध रूप से जारी है। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
दिल्ली सरकार में मंत्री परवेश साहिब सिंह ने आज दिल्ली के सभी जिलों के जिला मजिस्ट्रेट के साथ यमुना और संभावित बाढ़ की स्थिति को लेकर समीक्षा बैठक की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने बताया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई इस बैठक में आपातकालीन इंतजामों पर विस्तार से चर्चा की गई। श्री सिंह ने बताया कि उन्होंने सभी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी भी स्तर पर ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी दिल्लीवासियों को सुरक्षित रखना और जलभराव से बचाना दिल्ली सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। नई दिल्ली नगरपालिका परिषद NDMC ने राष्ट्रीय राजधानी में यमुना के बढ़ते जलस्तर और लगातार हो रही भारी वर्षा से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए ठोस और तात्कालिक कदम उठाए हैं। आज नगरपालिका के विभागाध्यक्षों के साथ नई दिल्ली में हुई एक समीक्षा बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए NDMC के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने बताया कि परिषद ने आपात तैयारी, नालों की डीसिल्टिंग, जल निकासी व्यवस्था और 24/7 नियंत्रण कक्ष जैसी महत्वपूर्ण पहले लागू की हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित हो सके। दिल्ली यातायात पुलिस ने यमुना नदी के बढ़ते जलस्तर को ध्यान में रखते हुए पुराने लोहे के पुल को यातायात और सार्वजनिक आवाजाही के लिए बंद कर दिया है। यातायात पुलिस ने बताया है कि यह पुल आज शाम 4 बजे से अगले आदेश तक बंद रहेगा। यातायात पुलिस ने लोगों को वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को एक से अधिक पहचान पत्र रखने के मामले में आज नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में श्री खेड़ा का नाम नई दिल्ली विधानसभा और जंगपुरा विधानसभा में दो अलग अलग पहचान पत्र के जरिए पंजीकृत बताया गया है। निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी ने श्री खेड़ा को इस महीने की 8 तारीख को सुबह 11 बजे तक अपना जवाब देने के लिए कहा है। वहीं दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के कथित रूप से एक से अधिक मतदाता पहचान पत्र रखने के मामले पर उन पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। श्री सचदेवा ने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी देशभर में कथित वोट चोरी के नाम पर भ्रम फैला रहे हैं। वहीं दूसरी ओर उनके सबसे करीबी प्रवक्ता पवन खेड़ा द्वारा दो मतदाता पहचान पत्र रखने के मामले में श्री गांधी चुप्पी साधे हुए हैं। श्री सचदेवा ने कहा कि ये कांग्रेस और राहुल गांधी के दोहरे मापदंड को दर्शाता है। हालांकि एक से अधिक मतदाता पहचान पत्र रखने के आरोप पर पवन खेड़ा ने जवाब देते हुए कहा कि उन्हें आज मालूम पड़ा है कि उनका नाम अभी तक नहीं काटा गया है।
हमारे सारे आरोप जो हम चुनाव आयोग पर लगाते हैं, जो सारे सवाल हम चुनाव आयोग पर खड़े करते हैं, वो अमित मालवीय ने भी साबित कर दिया। अब क्या चुनाव आयोग अमित मालवीय को से हलफनामा मांगेगा, जांच करेगा? हम भी चाहते हैं जांच हो ये सब बातों। जो अनुराग ठाकुर ने किया वही अमित मालवीय ने किया। गोली हम पर चलाई, लग गई जाकर चुनाव आयोग। इसी बात को राहुल गांधी 7 अगस्त से आज तक चुनौती देते आए हैं कि ये प्रक्रिया क्या है, कैसे चल रहा है चुनाव आयोग। नाम काटने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की मेरी नहीं है, मैं नहीं चला रहा हूं चुनाव आयोग।
दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉन कॉलेजिएट विमेन एजुकेशन बोर्ड में प्रवेश के लिए 5वीं कट ऑफ सूची जारी कर दी गई है। यह सूची बीए प्रोग्राम और बीकॉम पाठ्यक्रमों के लिए शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए लागू होगी। इच्छुक छात्राएं कट ऑफ और दाखिले से जुड़ी विस्तृत जानकारी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट से प्राप्त कर सकती हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि दिल्ली सरकार इस वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मनाएगी। आज दिल्ली सरकार की कैबिनेट मीटिंग के बाद श्रीमती गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस दौरान दिल्ली सरकार 75 नई सेवाओं और योजनाओं को जनता को समर्पित करेगी, जिनमें विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लंबे समय से लंबित कार्यों की शुरुआत शामिल होगी। एक रिपोर्ट।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से आरंभ होने वाले इस सेवा पखवाड़े में दिल्ली सरकार अनेक योजनाओं का उद्घाटन और शुभारंभ करेगी। इनमें 150 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन, सघन सफाई अभियान, 5 बड़े अस्पतालों के उद्घाटन के अतिरिक्त शिक्षा, आवास, परिवहन और नागरिक सुविधाओं से जुड़ी कई अहम परियोजनाएं शामिल होंगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि यह सेवा पखवाड़ा केवल औपचारिक आयोजन नहीं होगा, बल्कि जनता के लिए वास्तविक लाभ पहुंचाने वाली योजना का कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगा।
वो सारे काम जो वर्षों से लंबित थे दिल्ली में, उन सभी कामों का आगाज हम माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पे करेंगे। दिल्ली सरकार पूरी तरीके से समर्पित होकर उनके सम्मान में सेवा का पखवाड़ा चलाएगी और पूरे के पूरे दिल्ली में अनेकों हर वर्ग से निमित्त योजनाओं को लेकर के आएंगी और उनका क्रियान्वयन करेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सभी कार्य जनहित के साथ साथ विकसित दिल्ली की सरकार की प्रतिबद्धता को भी आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि इस सेवा पखवाड़े में जनता तक योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचे और दिल्ली विकास की नई ऊंचाइयों को छुए। प्रादेशिक समाचार के लिए सकलैन अख्तर।
मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने विपक्षी नेताओं के हालिया विवादित बयानों पर कड़ा आक्रोश व्यक्त किया है। आज नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय माताजी के विरुद्ध कथित अपमानजनक भाषा का प्रयोग न केवल राजनीति का स्तर गिराता है, बल्कि संपूर्ण महिला समाज का भी अपमान है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने आज न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अंतर्गत किसानों से कपास की निर्बाध खरीद के लिए कपास किसान ऐप का शुभारंभ किया। यह ऐप किसानों को अपना पंजीकरण, स्लॉट बुकिंग और भुगतान की स्थिति का पता लगाने की सुविधा प्रदान करेगा, जिससे कपास खरीद प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता और गति आएगी। एक रिपोर्ट।
श्री गिरिराज सिंह ने कहा कि यह मोबाइल ऐप कपास उत्पादकों के लिए कपास की बिक्री को आसान बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने आगे बताया कि इस ऐप के जरिए उपयोगकर्ता कई भारतीय भाषाओं में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। श्री सिंह ने यह भी बताया कि यह ऐप सुनिश्चित न्यूनतम समर्थन मूल्य से खरीद के माध्यम से कपास किसानों को किसी भी संकटग्रस्त बिक्री से बचाने में मदद करेगा, कागजी कार्रवाई को कम करेगा और खरीद केंद्रों पर समय की बचत करेगा। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत अपनी सतत विकास प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में G20 देशों में से एक है। नई दिल्ली में वैश्विक सतत विकास शिखर सम्मेलन में श्री गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने COP21 को सफल बनाने में निर्णायक भूमिका निभाई थी। उन्होंने कहा कि भारत सतत विकास लक्ष्यों के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। अखिल भारतीय थल सैनिक शिविर का आज नई दिल्ली में उद्घाटन हुआ। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस 12 दिवसीय शिविर में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 17 राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC निदेशालयों के लगभग 1500 कैडेट भाग लेंगे। राजधानी के अधिकतर इलाकों में आज सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है, जिससे तापमान में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। आज का अधिकतम तापमान सामान्य से 5.1 डिग्री सेल्सियस कम 29.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 4.8 डिग्री सेल्सियस कम 21.7 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान हल्की बारिश और बादल छाये रहने की संभावना है। राजधानी दिल्ली में 13 वर्ष बाद राष्ट्रीय रैंकिंग टेबल टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा। मौजूदा राष्ट्रीय चैंपियन दिया चीतली और राष्ट्रमंडल खेलों के स्वर्ण पदक विजेता जी साथियान और हरमीत देसाई सहित कई शीर्ष भारतीय खिलाड़ी 7 सितंबर से शुरू हो रहे इस चैंपियनशिप में हिस्सा लेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली स्थित यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन किया। कहा, दुनिया भारत के साथ सेमीकंडक्टर का भविष्य बनाने के लिए तैयार। दिल्ली सरकार में मंत्री परवेश साहिब सिंह ने दिल्ली के सभी जिलों के जिला मजिस्ट्रेट के साथ यमुना और संभावित बाढ़ की स्थिति को लेकर समीक्षा बैठक की। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को एक से अधिक वोटर पहचान पत्र रखने के मामले में नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया। और दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉन कॉलेजिएट विमेन एजुकेशन बोर्ड में प्रवेश के लिए पांचवी कट ऑफ सूची जारी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।